नमस्कार भारत, आज है तारीख 7 जुलाई, दिन शनिवार। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। 10 साल की सजा पाए पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, जल्द लौटूंगा पाकिस्तान।
I am going back as soon as my wife recovers. As soon as she's off ventilator, I'll be going back home and not home, but I understand that they will.
पाकिस्तान की न्यायपालिका क्या वाकई में है तंदुरुस्त? ले चलेंगे भारत प्रशासित कश्मीर में मारे गए जवान जावेद अहमद डार के घर।
तकरीबन रात की शाम की 8:30 थे, तो हम घर की तरफ मुड़ रहे थे, तो इधर से आवाज आ रही कि किसी ने आपके भाई को यहाँ पे उठा लिया है।
इन सब के अलावा होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो जल्द ही पाकिस्तान लौटेंगे। नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं, जहां उनकी बीमार पत्नी का कैंसर का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए सम्मान मांगने की सजा अगर जेल है तो वो इसका सामना करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम को 7 साल की सजा सुनाई है। इस बीच मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ ने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा,
यह फैसला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और लीगली बहुत फ्लॉड है। इसमें कई लीगल लूप होल्स हैं, एक आज मैं भी जिक्र करूंगा। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मुस्तरद करती है।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा है कि उनके मंत्रिमंडल ने यूरोपीय संघ के साथ भविष्य के रिश्तों पर अहम निर्णय लिए हैं। करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद मंत्री औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर सहमत हुए। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ कई सामानों और कृषि उत्पादों पर मुक्त व्यापार जारी रखेगा, लेकिन यूरोपीय देशों में लोगों का मुक्त आवागमन खत्म हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेता जूलियस मलेमा ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण पर दक्षिण अफ्रीका को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो जिम्बाब्वे ने की थी। उन्होंने कहा कि बिना मुआवजा दिए गोरे लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करना खतरनाक होगा। उन्होंने कहा,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट इट राइट, इट मस्ट बी डन इन एन ऑर्डरली फैशन, इट मस्ट बी ओपन।
ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सही तरीके से करें। इस मसले पर लोगों के विचार जानने चाहिए और एक सही प्रक्रिया के तहत ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर असंतुष्टों को दबाया गया तो विरोधियों के रूप में वो और मजबूत होंगे। ये थे दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेता जूलियस मलेमा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड में गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने गुफा में एयर सप्लाई लाइन स्थापित कर दी है। बचाव दल ने गुफा में ऑक्सीजन के गिरते स्तर पर चिंता जताई थी। बचाव कार्य में लगे एक गोताखोर की कल मौत हो गई थी। गुफा में बच्चे 23 जून से फंसे हैं। साउथ सूडान के सरकार और विद्रोहियों के बीच स्थायी संघर्ष विराम के लिए समझौता हो गया है। राजधानी खार्तूम में दोनों पक्षों ने शहरी इलाकों से हटने पर सहमति जताई, साथ ही दोनों पक्ष युद्धबंदियों को रिहा करने पर भी सहमत हुए। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी दोनों पक्षों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आज बातचीत करेंगे। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि क्यूबेक प्रांत में लू लगने से एक हफ्ते में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में अधिकतर लोग मॉन्ट्रियल इलाके से हैं और अकेले रह रहे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का फैसला हो गया है। फ्रांस और बेल्जियम ने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने उरुग्वे को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन ब्राजील को बेल्जियम ने 2-1 से हरा दिया। कार्डिफ में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में कल इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। कल पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई। पहले प्रधानमंत्री पद गंवाने वाले नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही उनकी बेटी को 7 साल और दामाद को भी 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लंदन में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो पाकिस्तान वापस लौटेंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वह जल्द ही पाकिस्तान लौटेंगे। नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं, जहां उनकी बीमार पत्नी का कैंसर का इलाज चल रहा है। नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। लंदन में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा,
I'm going back as soon as my wife recovers, as soon as she's off ventilator, so I'll be going back home and
जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएंगी और वेंटिलेटर से बाहर आ जाएंगी, मैं अपने देश लौट जाऊंगा। घर नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि वो हवाई अड्डे से ही मुझे जेल ले जाएंगे। जहां तक इस फैसले के खिलाफ अपील का सवाल है, मैं अपने वकील से संपर्क में हूं और उनसे सलाह मशविरा कर रहा हूं। नवाज शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि उनका इरादा ब्रिटेन में तो क्या, दुनिया के किसी भी देश में शरण लेने का नहीं है। उधर पाकिस्तान में नवाज के वकील कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में हैं।
The next step is in fact this decision will be challenged within 10 days before the honorable Islamabad High Court.
नवाज शरीफ के वकील अब्दुल रशीद शेख कह रहे थे कि कोर्ट के फैसले को अगले 10 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी जाएगी, साथ ही हाई कोर्ट से सजा को निलंबित करने की अपील भी की जाएगी। नवाज के अलावा उनकी बेटी मरियम और दामाद को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान में 25 जुलाई को संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन लाहौर सीट से उम्मीदवार मरियम अब चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गई हैं। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग इस फैसले में कई कानूनी खामियां गिना रही है, जबकि विपक्षी नेता इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ जस्टिस के चेयरमैन इमरान खान ने स्वात में एक चुनावी रैली में कहा,
आज आपको सबको, सारों को, सारे पाकिस्तानियों को आज दो नफल पढ़ना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत है, ये नए पाकिस्तान की शुरुआत है। जिस हमारे नए पाकिस्तान में बड़े बड़े डाकू अब से असेंबलियों में नहीं जाएंगे, वजीर नहीं बनेंगे, वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, सदर नहीं बनेगा, बड़े बड़े डाकू अब जेलों में जाएंगे।
पिछले साल पनामा गेट केस में अदालत की फटकार के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, ऐसे में देखना होगा कि नवाज शरीफ टाइम आउट लेंगे या फिर कोई नया सियासी पासा फेंकेंगे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ इस फैसले से पाकिस्तान की न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा भी खासी जोर शोर से हो रही है। हाल फिलहाल में भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भी सवालों के घेरे में आई है। ऐसे में पाकिस्तान की अदालत का एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ये फैसला पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था को किस तरह दर्शाता है, बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने यही जानने के लिए बात की पाकिस्तान की पत्रकार और द न्यूज ऑन संडे की डिप्टी एडिटर सबाहत जकारिया से।
ये जो फैसला है ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने किया है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक सेपरेट सिस्टम है जुडिशरी के विदिन ही, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में। और उसमें आमतौर पर पहले तो यही ख्याल था कि जो टेररिज्म रिलेटेड केसेस हैं वो उसमें चलाए जाएंगे, लेकिन कोई भी बड़ी नौयत का केस जो कि जल्दी एक्सपेडाइट करना चाहते हैं वो टेररिज्म कोर्ट के अंदर, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर चला देते हैं। तो इस केस में ये फैसला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दिया है।
पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो कितनी फ्री आपको नजर आती है, कितनी आजाद है अपने फैसले लेने के लिए?
ये काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि मुख्तलिफ जुडिशरी के लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी है जिसने ये फैसला दिया है, उसमें ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक जुडिशियल एक्टिविज्म की निशानदेही की जा सकती है, कि जुडिशरी जो है वो पिक एंड चूज करती है कि कौन से केसेस जो हैं वो सामने लाए जाएं, कौन से जो हैं वो उनको साल हर साल दबा दिया जाए। तो उस हवाले से देखा जाए तो शायद इसमें कुछ ना कुछ जो है वो एक कहा जा सकता है कि एक बायस का आंसर शामिल हो सकता है या अपनी मर्जी का एलिमेंट शामिल हो सकता है। मगर आजाद है अदलिया या नहीं है उसका जवाब तो डायरेक्ट देना मुश्किल है।
और कहीं ना कहीं क्या ये दिखाता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है जो पाकिस्तान का वो आर्मी के साथ मिलकर के काम करता है, यानी आर्मी की जो एक शेडो है उसकी परछाई उसके साथ उसके पीछे छुप करके जुडिशियरी सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या हम लोग?
कुछ हलकों में बहरहाल ये बात समझी जाती है और ये बात की जाती है, ये बहुत ओपनली तो नहीं कही जा सकती, ना ही जो है जाहिर है इसका कोई सबूत है किसी के पास। लेकिन अलबत्ता जो मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हुए हैं पिछले दिनों के अंदर और जिस तरीके से सिचुएशन जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल वो उभर कर सामने आई है, तो उस हवाले से कुछ लोगों की राय ये है कि ऐसा हो सकता है।
और इससे पहले जो आपको कभी याद आता हो कि पाकिस्तान की जो जज हैं या वहाँ की जो अदालतें हैं उन्होंने जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुनाया?
जी, जो ऑफ द टॉप ऑफ मंथ है जो बहुत बड़ा फैसला जो जुडिशरी का पॉलिटिशियन के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ जो जहन में आता है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की हैंगिंग है, जो कि एक जुडिशियल हैंगिंग थी। तो वो एक बहुत बड़ा फैसला था जिसमें कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जुडिशली जो है वो हैंग किया गया।
पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था के बारे में बता रही थी पत्रकार सबाहत जकारिया। नवाज शरीफ को सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान में खासी हलचल है, वहां चुनाव होने वाले हैं, उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री पद से अयोग्य घोषित किया जा चुका है। कल सजा सुनाए जाने के बाद आज के पाकिस्तानी अखबारों ने इस खबर को कैसे छापा है ये जान लेते हैं आज के प्रेस रिव्यू में। इस समय हमारे साथ इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार एहतशामुल हक जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं वहां के अखबारों का हाल। जी एहतशाम, आपका स्वागत है, बताएं क्या क्या छपा है आज के अखबारों में इस्लामाबाद में?
देखिए जी, सारे पाकिस्तान के अखबार जो है ना बड़े बड़े आज पैनल हेडलाइन छह सुर्खियां जो है वो नवाशी साहब, उनकी बेटी और उनके दामाद की सजाओं के मुतालिक है एवन फील्ड केस के बारे से। अब जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू का अखबार है रोजनामा जंग, उसकी लीड है नवाज शरीफ को 14 बरस की साथ साथ 21 साल नायल करने की छह सुर्खी, और उनका बयान छपा हुआ है नीचे नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ का एहलिया के होश संभालने के फौरन बाद वापसी। और डॉन अंग्रेजी का बड़ा अखबार है, ये लिखता है एवन फील्ड वर्डिक्ट, नवाज शरीफ टू सर्व 10 years इन जेल फॉर ओनिंग एसेट बियॉन्ड मींस। इसी तरह से अंग्रेजी का दूसरा अखबार है ट्रिब्यून, इसकी बैनर हेडलाइन है शरीफ पे हैवी फॉर एवन फील्ड फ्लाइट फ्लैट। फिर उर्दू का एक और अखबार है बड़ा दुनिया, इसकी बैनर लीड है जी नवाज शरीफ 10 साल मरियम 7 सफदर को 1 साल कैद। इस तरह से इसी के साथ लिखा है 1,65 करोड़ रुपया जुर्माना भी। फिर एक ऑब्जर्वर इस्लामाबाद का अखबार है अंग्रेजी का, ये लिखता है लीड है जी नवाज जेल फॉर 10 years मरियम 7। तो ये सारे अखबार आज यही दे रहे हैं। फिर इस तरह बयानात छपे हुए बाकी लोगों के, इमरान खान का छपा हुआ।
जी वही मैं पूछना चाह रहा था एहतशामुल हक साहब के, इमरान खान के बयानों को कैसे सुर्खियां बनाया गया है क्योंकि बहुत आजकल चर्चा में।
देखिये नवाज जी दूसरा बयान बड़ा जो है ना वो इमरान खान का ही है, जो साथ साथ ये बता रहा है कि जी ना जो इनके खिलाफ जो फैसला हुआ है वो बिल्कुल ठीक है और ये आएंगे इनको फौरन जेल भेजा जाएगा, और नहीं भेजेंगे तो हम इनको इख्तदार में आके इनके बाकी पार्टी के लोगों को भी जेल में भेजेंगे। ये बयानात इनके छपे हुए हैं। फिर एक और अहम खबर है जी, बड़ी खबर वो भी कि नैब की तरफ से कि जो ही नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आएंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह की खबरें हैं, अब देखना यह है कि वापस आते हैं कि नहीं आते। सिर्फ इतना ही कहा है नवाज शरीफ ने कि बेगम की होश में आते ही वो पाकिस्तान आ
जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना है कि वो कब तक आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब।
बीबीसी इंडिया बोल्ड।
कहीं बच्चा चुराने की अफवाह के कारण तो कहीं गोमांस रखने के शक में पिछले एक वर्ष के दौरान 9 राज्यों में भीड़ ने पीट पीट कर 27 लोगों की हत्या की। क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है? भीड़ को ये हिम्मत मिलती कहाँ से है कि वो किसी की जान ले ले? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 7 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या फिर 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल में जरूर भाग लें। बढ़ते हैं आगे। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां जिले में संदिग्ध चरमपंथियों ने गुरुवार को पुलिस कांस्टेबल जावेद अहमद डार को अगवा कर लिया था, जिसके बाद उनकी लाश पाई गई। कल पुलिसकर्मियों और उनके गांव के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और उन्हें दफनाया गया। बीबीसी के सहयोगी माजिद जहांगीर जावेद अहमद डार के घर पहुंचे, सुनिए ये रिपोर्ट।
ये थी जावेद अहमद डार की बहन, जो बता रही थी कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। वो ये भी बता रही थी कि जिन्होंने मेरे भाई को हमसे छीना, उनके साथ भी ऐसा ही हशर होना चाहिए। अपने भाई के बगैर हमें ज़िंदगी नहीं चाहिए, आओ हमें भी मार दो। वो गद्दार नहीं था। जिन्होंने हमारे भाई को मारा, उनसे कह दो कि उनके घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगियां भी छीन लो। जावेद की माँ हाजरा शुपाया के वील गांव में अपने दो मंजिला मकान में कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ रो रही हैं। उनके आसपास बैठी दूसरी महिलाएं उन्हें दिलासा देने की बहुत कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उन पर इन कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बता रही थी कि मेरा दुल्हा बेटा मुझसे छीना गया। वो ये भी बता रही थी कि ऐ मेरे दुल्हा बेटे, तुझ पर मेरी जिंदगी निछावर हो। जावेद अहमद के घर कई लोग आ रहे थे। जावेद अहमद को गुरुवार रात के 8:30 बजे अपने गांव में अपने घर के नज़दीक संदिग्ध चरमपंथियों ने अपहरण किया था और शुक्रवार सुबह को उनका मृत शव कुलगाम के पारीवन इलाके में पाया गया। जावेद अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में कॉन्स्टेबल के अहदे पर काम कर रहे थे। जावेद अहमद गुरुवार को 5 दिनों के बाद ड्यूटी से अपने घर आए थे और शाम को घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ टहलने निकले थे, जिस दौरान उनका अपहरण हुआ। उनके चचेरे भाई मुजफ्फर अहमद कहते हैं,
तकरीबन रात की शाम की 8:30 थे, तो हम घर की तरफ मुड़ रहे थे तो इधर से आवाज़ आ रही कि किसी ने आपके भाई को यहाँ पे उठा लिया है। वो 3-4 आदमी थे, सेंटर में सफ़ेद कलर की गाड़ी थी, तो उसी में उठा लिया उनको।
मुजफ्फर अहमद कहते हैं कि मैं इस तरह की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।
पूरी तरह हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऐसी वहशियाना और दरिंदाना हरकत से।
जावेद अहमद के एक और रिश्तेदार बिलाल अहमद कहते हैं कि जावेद अपने घर का काफी बड़ा सहारा थे।
सपोर्ट तो था ही, ये दो ही भाई है, एक भाई इनका बड़ा भाई है और ये दूसरा भाई था। सपोर्ट तो होता ही है, बाप को बेटे का सपोर्ट होता ही है, तो ये एक बहुत बड़ा सदमा है इनके लिए।
बिलाल अहमद कहते हैं कि जावेद के माता पिता आने वाले 15 तारीख को हज पर जाने वाले थे, जिसके लिए घर में तैयारियां हो रही थी।
हज पे जाने का ये इनकी टिकट भी निकल चुकी है, इससे पहले उमरा भी कर चुके हैं इसी साल में, अभी उसकी भी तैयारी हो रही थी। ये एक बड़ा सदमा है इनके लिए।
जावेद अहमद को शुक्रवार सुबह अपने गाँव वेल में सुपुर्द खाक किया गया। हालिया दिनों में चरमपंथियों ने सेना के एक जवान औरंगजेब का भी दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में उनका अपहरण किया था और करीब 10 घंटों के बाद उनका मृत्यु शव शुपियां के एक जंगल में बरामद किया गया था। औरंगजेब से पहले सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल उमर फयाज का भी अपने मामू के घर से चरमपंथियों ने अपहरण किया था और अगले दिन उनका मृत्यु शव पाया गया था। बीते 1 महीने में शुपियां जिले में इस तरह की यह तीसरी घटना है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
2 दशक से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु को 1996 में भारत के प्रधानमंत्री पद की पेशकश हुई थी, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें ये पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी थी। ज्योति बसु की 105वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
ये तो हमार व्यक्तिगत कथा ना, हमरा कर्मसूची रेखेछिलाम 77 সালে। সবথেকে সাফল্য হচ্ছে আমাদের গ্রামে, যেখানে 70% মানুষ বাস করেন, সেখানে 30-স্তর পঞ্চায়েত আমরা করেছি এবং যা কোনো রাজ্যে হয় না।
ये आवाज है ज्योति बसु की, जो बहुत अच्छे वक्ता न होने और अधूरे वाक्य बोलने के बावजूद, और वो भी बिना किसी मुस्कान के, लाखों लोगों की भीड़ जमा कर पाने की क्षमता रखते थे। आखिर क्या वजह थी लोगों में उनके प्रति इतने विश्वास की? शायद इसके पीछे विश्वास था कि ज्योति बसु कभी उनके लिए लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ेंगे। ज्योति बसु और उनसे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर राय के बीच लगभग उस हद तक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी जैसी आजकल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच रहती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दोनों के बीच जिस तरह की नज़दीकियां थीं, उन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उस जमाने में ज्योति बसु को एक विधायक के रूप में 250 रुपए तनख्वाह के तौर पर मिलते थे, जिसका अधिकांश हिस्सा वो पार्टी को दे दिया करते थे। सिद्धार्थ शंकर राय ने एक जगह लिखा है,
मैं जब ज्योति बसु से मिलने जाता था तो कभी कभार उनकी रसोई की तरफ बढ़ जाता था, ये देखने के लिए कि आज खाने में क्या बना है। उनके यहाँ बहुत साधारण खाना बनता था, दाल भात और बैंगन भाजा। तब भी उनकी पत्नी कमला मुझसे शिकायत करती थी कि अपने दोस्त को बताइए कि घर किस तरह चलाया जाता है। वो अपना लगभग पूरा वेतन पार्टी को दे देते हैं और मेरे लिए दोनों वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो जाता है।
जिस समय ज्योति बसु इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वहां मौजूद थे। ये तीनों एक ही पानी के जहाज से वापस भारत लौटे थे। ये अलग बात है कि कुछ दिनों में उनके राजनीतिक रास्ते अलग अलग हो गए। बांग्लादेश युद्ध से कुछ समय पहले सिद्धार्थ शंकर राय ने ज्योति बसु की इंदिरा गांधी के निवास पर एक गुप्त मुलाकात करवाई थी। सिद्धार्थ शंकर राय लिखते हैं,
किसी को इस मुलाकात का पता न चले इसलिए मैं रात के 11 बजे अपनी पत्नी माला की फिएट कार में ज्योति बसु को बैठाकर खुद ड्राइव कर एक सफदरजंग रोड पहुंचा। एक घंटे की मुलाकात के बाद जब हम बाहर निकले तो रास्ता भूल गए और दिल्ली के गोल चक्करों के चक्कर काटते रहे। जब एक घंटे तक हम रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो मैंने कहा कि किसी थाने में पहुंचकर मदद मांगी जाए। इस पर ज्योति बसु ने कहा, नालायक, क्या तुम पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटना चाहते हो कि मैं इंदिरा गांधी से मिलने उनके निवास स्थान पर गया था।
सौभाग्य से सिद्धार्थ शंकर राय को रास्ता मिल गया और किसी थाने जाने की नौबत नहीं आई। 1993 में ज्योति बसु को क्यूबा आने का निमंत्रण मिला। यात्रा के दौरान जब बसु सोने की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें संदेश मिला कि फिडेल कास्ट्रो उनसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ उस यात्रा पर क्यूबा गए सीताराम येचुरी बताते हैं।
उस समय रात को अचानक 11 बजे ज्योति बाबू और हम खाना वाना खा के सोने की तैयारी में थे, अचानक मैसेज आया कि कमांडेंट वुड लाइक टू मीट यू। तो ज्योति बाबू ने कहा कि इस समय क्या मिलने हैं, मतलब रात को 11 बजे। कहता नहीं नहीं, वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं दफ्तर में, आपको आना ही है। तो ज्योति बाबू फिर बंद गले सूट दोनों पहन के हम दोनों गए।
अगले दिन जब ज्योति बसु भारत के लिए वापस जाने के लिए हवाना एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि फिडेल कास्ट्रो उन्हें सी ऑफ करने वहां पहुंचे हुए हैं। दुनिया में सिर्फ एक महिला थी जो किसी भी समय बिना किसी अपॉइंटमेंट के ज्योति बसु के दफ्तर में घुस सकती थी। उनका नाम था मदर टेरेसा। टेरेसा पर किताब लिखने वाले नवीन चावला बताते हैं,
और एक बार मैंने ज्योति बसु साहब से पूछा कि यू गिव हर सो मच सपोर्ट, आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो एथियस्ट हैं, व्हाट कैन यू हैव इन कॉमन विद मदर टेरेसा फॉर हूम गॉड इज एवरीथिंग। हंसने लगे। ही सेड वी बोथ शेयर अ लव फॉर द पुअर, और कंप्लीट सपोर्ट ज्योति बसु साहब ने उनको दी। मदर टेरेसा यूज टू टेल मी आई कैन वॉक इन टू हिज रूम एट एनी टाइम, ही विल गिव हर व्हाट एवर शी वॉन्ट्स। जब वो बीमार होते थे मदर टेरेसा उनके घर जाती थी, ऑल्दो ही वॉज एन एथियस्ट एंड डिडंट बिलीव इन प्रेयर, शी वुड से अ प्रेयर। और जब वो हॉस्पिटल में कलकत्ते में हॉस्पिटलाइज होती थी, बासु साहब कलकत्ते में होते थे तो रोज़ जाया करते थे, ICU में नहीं जाते थे, हाजिरी अपनी लगा के चले आते थे। क्या रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन गुडनेस एंड पॉवर्टी।
ज्योति बसु के मानवीय पक्ष का सबसे मार्मिक चित्रण उनकी पुत्रवधू डॉली बसु ने मदर पाथरिया की किताब अवर ज्योति बाबू में किया है।
मेरी शादी के एक दिन बाद ही मुझे बुखार चढ़ गया। अगली सुबह जब मैं बिस्तर में ही थी कि मैंने रसोई में कुछ बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी। मेरे ससुर एक पतीली में पानी गर्म कर रहे थे। वो बोले, तुम्हें गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। उन्होंने अपने हाथों से अपने बीमार पुत्रवधू के लिए चाय बनाई। उनके इस व्यवहार ने हम दोनों के बीच एक ऐसा संबंध कायम कर दिया जो ताउम्र बरकरार रहा।
कई मौकों पर ज्योति बसु ने किंग मेकर की भूमिका निभाई, लेकिन जब किंग बनने का मौका आया तो वो अपनी पार्टी के कहने पर पीछे हट गए। 1996 में वो उस जगह पहुंच सकते थे जहां आज तक कोई भारतीय कम्युनिस्ट नेता नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पार्टी ने प्रकाश काराट और सीताराम येचुरी के दबाव के चलते उसका यह कहते हुए विरोध किया कि पार्टी को उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब उनके पास सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत हो। बसु ने पार्टी के इस फैसले को सिर आंखों पर लिया। बाद में जब धूल थोड़ी छटी तो उन्होंने ये जरूर कहा कि वो पार्टी की एक ऐतिहासिक भूल थी। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव कहते हैं,
सिर्फ कम्युनिस्ट लीडर नहीं थे वो हम सभी लोग के नेता थे। प्राइम मिनिस्टर तक उनको पहुंचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, फैसला लिया, लेकिन पॉलिट ब्यूरो सीपीएम ने इजाजत नहीं दी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से ऊंचे स्टेटस के रूप में उनको देखा जाता था, माना जाता था ज्योति बाबू को।
मैंने भी एक बार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से पूछा था कि अगर ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर लिया होता तो क्या हुआ होता।
नया किस्म का आउटलुक होता था सरकार की आउटलुक होता था, सरकार की किसके लिए लड़ते।
लेकिन जो आर्गुमेंट दिया गया कि साहब बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, वो कैसे काम कर पाएंगे।
वो तो शुरू होना था ना जी, आप देखा नहीं उसके बाद ही जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की उन्होंने हार गई, उनके बाद ही जो कोलिशन पॉलिटिक्स का शुरू हो गया इंडिया में, तब तो सोचने लगा सब पार्टी आके। तो मोरारजी की भी कोलिशन गवर्नमेंट था, वीपी सिंह की था, देवी गौड़ा गुजरात, सभी कोलिशन शुरू हो गया। उसके बाद एनडीए में भी बीजेपी भी कोलिशन किया है, अब जानते हैं यूपीए तो कोलिशन ही है। तो उसका बहुमत का जरूरत नहीं था, हम भी सोचा था ये गलत हो गया, मोनूमेंटल मिस्टेक हम बोला है, बहुत बड़ा भूल किया है पार्टी में। होने से एक दूसरी किस्म का सरकार होने का उम्मीद थी। बहुत लेफ्ट पॉलिटिक्स एक नया रूप मिलता था, आपका किसान, आपका मजदूर, इसके सरकार बनता था, कोशिश करते थे। हम जानते हैं ये सही नहीं था, जो हमारा पूरा जब कंट्रोल होगा, जो लेफ्ट पार्टीज बोलता है सीपीएम की कोई कोई नेता, वो मेजॉरिटी थे जो तब होगा सरकार में, वो तो इंडिया में कभी होने नहीं है, होने वाला नहीं है।
अपनी जिंदगी में ही लेजेंड बन गए ज्योति बसु। 23 सालों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वो पीढ़ी अभी तक उनकी कमी को महसूस करती है जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर उनके ट्रेडमार्क संबोधन को सुनते हुए बड़ी हुई है। बंधुगण, मायरा, भायरा, बोनेरा। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
बेल्जियम हैव मेड इट थ्रू हियर इन कजान वेयर देयर हैव बीन सो मेनी ड्रामेटिक स्टोरीज विद जर्मनी, अर्जेंटीना एंड नाउ ब्राजील गोइंग आउट।
रूस में जारी फीफा विश्व कप में कल ब्राजील और उरुग्वे की हार के साथ ही विदाई हो गई और बेल्जियम और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गई। कल दूसरे क्वार्टर फाइनल में इस विश्व कप की छुपी रुस्तम बेल्जियम ने ब्राजील को 2-1 से हराया। बेल्जियम के लिए जीत की राह तब आसान हो गई जब ब्राजील के फर्नांडिन्हो एक बचाव करते हुए अपने हेडर से ही अपने ही जाल में बॉल दे बैठे। इसके बाद बेल्जियम के डी ब्रियोने ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। ब्राजील के अगस्तो ने 76वें मिनट में गोल कर बढ़त को 2-1 किया, लेकिन अंततः बेल्जियम इसी स्कोर पर जीता। इससे पहले फ्रांस ने वारेने और ग्रिस्बेन के गोल की बदौलत उरुग्वे को 2-0 से हराया। आज अन्य क्वार्टर फाइनल में स्वीडन का सामना इंग्लैंड से और मेजबान रूस का सामना क्रोएशिया से होगा। वहीं इंग्लैंड ने कार्डिफ में खेले गए दूसरे 2020 मुकाबले में कल भारत को 5-0 से हराकर 3 मैचों के सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। इंग्लैंड ने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य एलेक्स हेल्स के नाबाद 58 रनों की मदद से 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया। उधर विंबलडन में कल 5वें दिन शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्टर्फ को 6-3, 7-5, 6-2 से हराकर तीसरा दौर पार किया। लेकिन 11वीं वरीयता हासिल अमेरिका के सैम क्वेरी फ्रांस के गेल मॉनफील्ड से हार कर बाहर हो गए। वहीं महिला एकल वर्ग में 9वीं वरीयता हासिल अमेरिका के वीनस विलियम्स जर्मनी की किकी बर्टिंस से और 10वीं वरीयता हासिल मार्टिन कीज रूसी खिलाड़ी इवगेनिया रोडिस के हाथों हार कर बाहर हो गई।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात बीबीसी इंडिया बोल में शाम 7:30 बजे होगी। मोहम्मद शाहिद को समस्त सहयोगियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।